संयुक्त राष्ट्र में 31 ऐसे देश हैं जिन्होंने अब तक इसराइल को मान्यता नहीं दी है। इनमें 21 तो अरब लीग के सदस्य देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, ओमान है, इराक, कुवैत, सीरिया, यूएई, बहरीन। इसके अलावा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ईरान और इंडोनेशिया है, जो इसराइल को मुल्क नहीं मानते। क्योंकि ये ज्यादातर देश मुस्लिम बहुल हैं, तो एक आम धारणा बन गई है कि दुनिया के मुसलमान इसराइल के दुश्मन हैं, या दुनिया के मुसलमान इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। और ऐसा होने की वजह फिलिस्तीन और इसराइल का झगड़ा भी है। भारत में इसराइल का विरोध करने वाले मुसलमान भी खूब हैं, लेकिन इसराइल की मादरी जबान यानी मदर टंग हिब्रू पढ़ाने वाला भारत में एक ही टीचर है, और वो मुसलमान है। जेएनयू में हिब्रू पढ़ाने वाले डॉक्टर खुर्शीद आलम भारत के एकमात्र हिब्रू टीचर हैं, और इस बात का पता जिसे भी चलता है वो हैरान होता है। लेकिन डॉक्टर आलम क्या कहते हैं?
मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि इसमें ताज्जुब होने की क्या बात है। एक एक जब हम मुसलमान हो के हिंदी बोल सकते हैं, मैंने तो स्कूल में संस्कृत भी पढ़ी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। कोई मजहब, कम से कम इस्लाम तो मना नहीं करता कि आप हिब्रू न सीखिए, फ्रेंच न सीखिए। इसको अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, इसराइल और पैलेस्टाइन में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अब उसको आप एक्सटेंड करके रिलीजियस प्रॉब्लम तक ले जाएं, तो फिर बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं।
अगर ये ताज्जुब की बात ना होती डॉक्टर साहब, तो आप भारत में अकेले इंसान ना होते हिब्रू पढ़ाने वाले।
नहीं तो हिंदुस्तान के केस में तो नॉन मुस्लिम भी कोई नहीं है दूसरा।
हाँ, इसीलिए तो हैरत की बात है कि एकमात्र है और तो वो भी मुसलमान है।
तो इसका रिलीजियस एंगल भी हो सकता है, इसलिए कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो तो जीविश हिस्ट्री से जाके कनेक्ट होता है। वो तो एक ही हिस्ट्री है। वो सोलोमन कहते हैं हम, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो डेविड कहते हैं हम, दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं हम, इब्राहिम कहते हैं वो, अब्राहम कहते हैं। भाई हिस्ट्री तो वही है, नरेटिव वही है, कहीं कहीं इंटरप्रिटेशन चेंज हुए हैं। अच्छा, जो इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से जो चार आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ने भेजी है, खुदा ने भेजी है, उसमें बाइबल भी है, हिब्रू तोरा भी है। तोरा जो ज्यूस की रिलीजियस बुक है, होली बुक है, वो तो हिब्रू में है। तो जब अल्लाह हिब्रू में कम्युनिकेट कर रहा है, मुसलमान को हिब्रू में कम्युनिकेट करने में क्या प्रॉब्लम है?
तो आप हिब्रू की ओर कब गए?
हाँ, ये रही बात की है, तो चूंकि मैं वेस्ट एशिया का स्टूडेंट रहा, जेएनयू के अंदर मैं वेस्ट एशियन स्टडीज का स्टूडेंट रहा, और वेस्ट एशिया में इसराइल कोई भी टॉपिक लीजिए, इसराइल घूम फिर कर आ ही जाता है। अरब प्रॉब्लम लीजिए, ऑयल प्रॉब्लम लीजिए, कहीं ना कहीं इसराइल का कोई ना कोई एंगल रहता है। तो वो हमारी एक रुचि बढ़ी कि क्यों नहीं हम प्राइमरी सोर्स से खुद ही समझें कि क्या है फैक्ट ऑन द ग्राउंड।
और आप इसराइल भी रहकर आए?
इसराइल गया और वहाँ रहा, और हिब्रू यूनिवर्सिटी में मैंने हिब्रू भाषा सीखी वहाँ।
वो अनुभव कैसा था आपका इसराइल में रहने का?
इसराइली के लिए और हमारे ज्यादातर दोस्तों के लिए मैं पहला नॉन अरब मुस्लिम था जिनसे उनकी मुलाकात, क्योंकि वो यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो टूरिस्ट स्पॉट घूम कर चले आते हैं। बैक होम इसराइल के अंदर उनकी जो मुलाकात होती है वो फलस्तीनी होते हैं या अरब होते हैं। नॉन अरब मुस्लिम से उनकी मुलाकात नहीं थी, नहीं बहुत सारे ऐसे थे, तो वो काफी इंटरेस्ट लेते थे, हमसे बातें करते थे, डिस्कस करते थे, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी था, टू दी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था मैं।
हाँ।
तो उनके साथ बातें काफी अच्छी रही, और काफी चीजों में वो खुल करके बातें भी करते थे, वो अपनी पोजिशन बताते थे।
तो बतौर थर्ड पार्टी आपने कैसे देखा इस कॉन्फ्लिक्ट को?
देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, कई प्लेयर्स आ गए तो कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्लिकेट तो हो गया। उस कॉम्प्लिकेशन में ऑफ कोर्स रिलीजन को भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि ज्यूइश ज्यादातर जो थे वो यूरोप से आए थे, सेकुलर और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के सामने एक्सपोज था, वो उसको एक्सपीरियंस करके आए थे, तो रिलीजियस एलिमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं था। लेकिन ज्यूइशनेस की बुनियाद पर और पूरा ज़ायनिस्ट मूवमेंट खड़ा किया गया, एक नैरेटिव पूरी खड़ी की गई, और उसके अंदर बहुत सारे मिथ्स भी क्रिएट किए गए, लैंड विदाउट पीपल, पीपल विदाउट लैंड, बहुत सारे मिथ्स क्रिएट किए गए, ताकि जो स्कैटर्ड ज्यूइश पॉपुलेशन है उसको कंसोलिडिफाई किया जाए, उनको माइग्रेट किया जाए। और जो वो एक बिलीफ था कि जब तक हमारा अपना स्टेट नहीं होगा, हम अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। तो उस गोल के लिए बहुत कुछ किया गया और फिर वो इकट्ठे हुए। तो इस पूरे प्रोसेस में चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली गई।
अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार इस वक्त इसराइल में है और वो पैलेस्टाइन नहीं जा रहा है, रामल्ला नहीं जा रहा है। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन भारत के मुसलमान, भारतीय मुसलमान होने के नाते आप इस बात को कैसे देखते हैं?
ये कोई रिलीजियस टूरिज्म तो है नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये तो देश के लिए करने गए हैं, तो देश के हित में जो होगा वो करेंगे। एक मुसलमान होने के नाते, मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं भी ये सोच रहा हूँ कि देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, भारत के मुसलमान तरक्की करेंगे। तो इसमें कोई ऐसा कोई एंगल नहीं मुझे दिखता, एक बात। दूसरी चीज ये है कि इसराइल जो है एक इम्पोर्टेंट देश है, बहुत एंगल, बहुत पर्सपेक्टिव से हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। डिफेंस तो है, डिफेंस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां हमें उसकी जरूरत है। एक जमाना था कि अरब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था, अब अरब भी एक यूनिट तो है नहीं। सऊदी अरब है, अलग है, इजिप्ट का परसेप्शन अलग है, यूएई, कुवैत अलग अंदाज से सोचते हैं, सब कंट्रीज अलग अलग सोचते हैं। तो अब वो पुराना अरब वर्ल्ड भी नहीं है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑयल की थी, नेचुरल गैस की थी, ये उसके अंदर भी अब ऑल्टरनेट आने लगे हैं। वो रिक्वायरमेंट हमारी अरब वर्ल्ड फुलफिल कर रही है, लेकिन हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो अरब वर्ल्ड फुलफिल नहीं कर सकती हैं। उसके लिए हम जहाँ यूएसए के साथ हम टाई अप करते हैं, यूएसएसआर के साथ टाई अप करते हैं, वैसे हम इसराइल के साथ टाई अप कर रहे हैं। हमारी नीड है, देश की नीड है, कैम टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वाटर मैनेजमेंट में हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसके अंदर उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। बायलैटरल रिलेशंस के यही सिद्धांत है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। उसमें भारतीय मुसलमान होने की वजह से कुछ हम अलग सोचे ये जरूरी नहीं है, देश हित में यही है और मुझे लगता है कि ये सही दिशा है, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, वही बात कि अगर कुछ लोग इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि इसकी वजह से जो है हमारा पैलेस्टीनियन इशू जो है वो कमजोर हो जाएगा, तो हमारा पैलेस्टीनियन इशू में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। और जो हमारे कंट्रीब्यूशंस हैं पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर के, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको भी क्लियर कर दिया कि हम अभी भी टू स्टेट थ्योरी को प्रमोट करते हैं, हम उस पर करते हैं कि भाई पैलेस्टीनियन स्टेट इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन स्टेट अलग हो, इसराइल एक सॉवरेन स्टेट ऑलरेडी है, इस पोजीशन को भी उन्होंने क्लियर कर दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्शीद आलम हमसे बात करने के लिए।
बहुत शुक्रिया आपका।